यरमिया अध्याय चार, यरमिया अध्याय चार पद एक और दो। यहोवा की ये वाणी है, हे इसराइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौटा, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा, और यदि तू सच्चाई से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तब परमेश्वर की स्तुति होठों तक ही सीमित नहीं रहेगी, जैसा कि आज अनेक जन कहते हैं जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ये सब होठों से निकलने वाले शब्द है, ये सब अर्थहीन है, परंतु उस समय यही शब्द मनुष्य के मन से निकलेंगे और सच्चाई के होंगे। यरमिया अध्याय चार पद दो और तीन। न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो अन्य जातियां उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी और उसी पर घमंड करेंगी, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले जाड़ों में बीज मत बो, अपनी कठोर भूमि को जोतो कि परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना करे और फल उत्पन्न करे। यरमिया अध्याय चार पद चार। यहोवा के लिए अपना खतना करो, हां अपने मन का खतना करो, अपने सांसारिक मन का, उस मन का जो देह के अधीन है। यही विषय पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में उठाता है। यरमिया अध्याय चार पद चार। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हां अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। मन को अलग कर दो जो देह के अधीन है और शारीरिक लालसाओं को खोजता है, जिससे कि आप संपूर्ण रूप से परमेश्वर और आत्मिक बातों के प्रति समर्पित हो जाए। यरमिया अध्याय चार पद पांच से लेकर दस तक। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में ये सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो और गढ़ वाले नगरों में जाएं, सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यनाश ले आया चाहता हूं। एक सिम अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है, वो कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें से कोई बसने वाले ना रहने पाए। इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ कोप हम पर से टला नहीं है। उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा, याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, परमेश्वर की बातें सुनकर यरमिया भौचक्का रह गया। परमेश्वर का दंड आने वाला है और ये सब उपासक शांत हो जाएंगे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा। यरमिया अध्याय चार पद दस। तूने ये कहकर कि तुमको शांति मिलेगी, निश्चय अपनी इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तलवार प्राणों को मिटाने पर है, अन्य भविष्यद्वक्ता झूठा संदेश पहुंचा रहे थे, शांति 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 और सुरक्षा। बाबुल यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, वो इस स्थान को कभी नहीं घेर पाएगा। यरमिया अध्याय 4 पद 11 से लेकर 18 तक। उस समय तेरी इस प्रजा से और यरूशलेम से भी कहा जाएगा, जंगल के मुंडे टिलों पर से प्रजा के लोगों की ओर लू बह रही है, वो ऐसी वायु नहीं जिससे ओसाना वो फरचाना हो, परंतु मेरी ओर से ऐसे कामों के लिए अधिक प्रचंड वायु बहेगी। अब मैं उनको दंड की आज्ञा दूंगा, देखो वो बादलों की नाई चढ़ाई करके आ रहा है, उसके रथ बावंडर के समान और उसके घोड़े उकाबों से भी अधिक वेग से चलते हैं। हम पर हाय, हम नाश हुए। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? क्योंकि दान से शब्द सुन पड़ रहा है और एप्रेम के पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार आ रहा है। अन्य जातियों में सुना दो, यरूशलेम को भी इसका समाचार दो। पहरुए दूर देश आकर यहूदा के नगरों के विरुद्ध ललकार रहे हैं, वे खेत के रखवालों की नाई उसको चारों ओर से घेर रहे हैं, क्योंकि उसने मुझसे बलवा किया है। यहोवा की यही वाणी है, ये तेरी चाल और तेरे कामों ही का फल है, तुम स्वयं इसे अपने ऊपर लाए हो। यरमिया अध्याय 4 पद 18 से लेकर 22 तक। ये तेरी दुष्टता है और अति दुखदाई है, इससे तेरा हृदय छिद जाता है। हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है, मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है, सारा देश लुट लिया गया है, मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूटे गए हैं, और कितने दिन तक मुझे उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा? क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। पौलुस की शिक्षा ये है कि हमें बुराइयों के प्रति सचेत रहना चाहिए। अनेक मनुष्य ऊपरी तौर पर बुराई में दिलचस्पी लेते हैं और कहते हैं, ओ मैं तो बुराई को अच्छी तरह से समझना चाहता हूं, इसलिए हम केबरे नृत्य देखने चलते हैं कि हमें प्रचार करने का विषय मिले। बाइबल के अनुसार बुराई का ज्ञान मात्र ही बहुत है, वरन उसके विषय अज्ञानी बने रहना उचित है। निश्चय ही ये उचित है कि आप मूक ही बन जाए, कि आपको वे शब्द प्रयोग ही न करना पड़े जो बुराई के शब्दकोश है। बुराई के प्रति अपना स्वभाव दूर ही रखे। यरमिया लिखता है, बुराई करने को तो वे बुद्धिमान है, परंतु भलाई करने वे जानते ही नहीं। अब परमेश्वर कहता है, कुछ लोगों का विचार है कि यरमिया पीछे हट रहा है, परंतु संदर्भ को देखने से ये विश्वास के लायक कथन नहीं है। परंतु वो उत्पत्ति अध्याय 1 ही की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, अतः वे जो अंतराल सिद्धांत के पक्ष में है, अर्थात उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1 और 2 के मध्य, वे एक अंतराल को मानते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम नहीं जानते कि अरबों अरब वर्ष पूर्व, पद 2 में, उत्पत्ति अध्याय 1 पद 2, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, अर्थात पृथ्वी वीरान और उजाड़ थी। ये मनुष्य की सृष्टि से पूर्व परमेश्वर के प्रकोप का परिणाम था। इसके पक्ष में यरमिया के इस निमिन पद को भी माना जाता है। यरमिया अध्याय 4 पद 23। मैंने पृथ्वी को देखा, वो सूनी और सुनसान पड़ी थी। ये वही शब्दावली है जो उत्पत्ति के अध्याय 1 के दूसरे पद में है। यरमिया अध्याय 4 पद 23। और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। आपको ध्यान होगा, परमेश्वर ने उत्पत्ति के अध्याय 1 पद 3 में क्या कहा था? उज्याला हो। यरमिया अध्याय 4 पद 24 से लेकर 27 तक। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूं कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देख जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे, क्योंकि यहोवा ने ये बताया कि सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूंगा। अतः वे जो अंतराल के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, वे इसे उसका प्रमाण स्वीकार करते हैं। उनकी समझ के अनुसार यरमिया पृथ्वी की इस अवस्था को देख रहा है जो उस समय थी जब परमेश्वर पृथ्वी का पुनरुद्धार करके मनुष्य की सृष्टि करना चाहता था। उनके अनुसार ये हिम युग का वो अंतिम समय था जब पृथ्वी पर प्रकाश नहीं था, उस पर पूरा अंधकार छाया हुआ था, तब उस पर जीवन नहीं था। यदि नगर थे तो वे नाश हो गए थे, अतः वे अवशेषों और मानव इतिहास से पूर्व का मानव इसी युग का मानते हैं। इस प्रकार इस अंतराल के सिद्धांत के विषय कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु इसमें कुछ समस्याएं भी है। वस्तुतः ये सृष्टि के बारे में एक सामान्य कल्पना है। निस्संदेह इसमें समस्याएं हैं, परंतु इसका अपना स्थान भी है, क्योंकि यहोवा ने ये बताया कि सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूंगा। यरमिया अध्याय 4 पद 28 से लेकर 31 तक। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने को ठाना और कहा भी है। मैं इससे नहीं पछताऊंगा और ना अपने प्राण को छोड़ूंगा। नगर के सारे लोग सवारों और धनुधारियों का कोलाहल सुनकर भागे जाते हैं, वे झाड़ियों में घुसते और चट्टानों पर चढ़े जाते हैं। सब नगर निर्जन हो गए और उनमें कोई बाकी ना रहा। और तू जब उजड़ेगी तब क्या करेगी? चाहे तू लाल रंग के वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण करे और अपनी आंखों में अंजन लगाए, परंतु व्यर्थ ही तू अपना श्रृंगार करेगी, क्योंकि तेरे मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं, वे तेरे प्राणों के खोजी हैं, क्योंकि मैंने जच्चा का शब्द पैलोटा जनती हुई स्त्री की सी चिल्लाहट सुनी है। ये सियोन की बेटी का शब्द है जो हाफती और हाथ फैलाए हुए कहती है, हाय मुझ पर, मैं हथियारों के हाथ पड़कर मूर्छित हो चली हूं।